अब हम चलते हैं आगे, आयत 153 से अब आगे हमारे सबक का आखिरी एंगल, लेकिन उसके अंदर फिर बहुत सारी बातें वो शुरू हो रहा है। अगली आयतों में जो बात है वो फिर अहले किताब की गलतियां, कैसे उनमें बिगाड़ शुरू हुआ, अल्लाह ने उनको कितना खूबसूरत दीन दिया था लेकिन उन्होंने उस दीन के हिस्से बखरे करके उसको क्या से क्या बना दिया, इसको हम देखेंगे। कुछ बातें तो तारीख की झलकी हैं, वो तो हम ऐसे ही गुजर जाएंगे, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने हैं इंशाल्लाह ताला। चलिए 153, यसअलुक अहलुल किताब, आपसे सवाल करते हैं अहले किताब, क्या अंत नज़िल अलैहिम किताब मिन अस्समाई, क्या आप इन पर एक किताब आसमान से उतार लाए। अच्छा, ये कैसे उतरी, ये किसने कब मुतालबा किया, अहले किताब की बात है। इसके बारे में रिवायात में आता है कि काब बिन अशरफ जैसे कुछ यहूदी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आके नबी सल्लम से ये बात कही थी कि आप चाहते हैं कि मुसलमान हो जाएं, तो बिल्कुल हमारे सामने आसमान से एक किताब उतरे और हम उसको मान लेंगे। ये तो चुपके से आप कहते हैं, आप कैसे वही आती है, हमें क्या पता वो आती है कि नहीं। आपको याद है कि इसी से मिलती जुलती बात यहूद ने हजरत मूसा से भी कही थी, अरिनल्लाह जहरत, हमें कोहे तूर पे ले जाए हम देखेंगे। वही इस अंदाज इन्होंने नबी सल्लम से भी किया। बास कहते हैं यहूद और नसारा में से मुख्तलिफ वक्तों में इनके नबी सल्लम के सामने ये मुतालबात आए थे, और बास कहते हैं कि सिर्फ नसारा या यहूद ने भी ये बात की थी कि हमारे ऊपर एक किताब नाजिल हो, कैसी मखसूस किताब हो। यहूद ने कहा, ये एक रिवायत पढ़ के सुना देती हूँ, यहूद और नसारा नबी सल्लम के पास आए और कहा, इस वक्त तक आपकी बैत नहीं करेंगे जब तक आप अल्लाह के पास से किताब लाएं जिसमें ये लिखा हो कि तू अल्लाह का रसूल है और ये किताब फलां के नाम पर हो, तो फिर हम मानेंगे। यानी उनको अल्लाह के नबी की जुबान से इन्नी रसूलुल्लाह का दावा पसंद नहीं आया, अल्लाह खुद लिख के भेजे कि हाँ हाँ ये मेरा अपॉइंटेड नबी है, इसको मान लेंगे फिर हम मानेंगे। इसी तरह बास कहते हैं कि तौरात तो लिखी भी आई थी ना फॉर्म में, ये कहते थे कि कुरान जुबानी शक्ल में क्यों आ रहा है, इसलिए इसको लेकर आइए फिर हम मानेंगे। तो ये सारे मुतालबात पे अल्लाह ताला कहते हैं, फकत सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, ए नबी आप गम ना करें, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इन्होंने तो मूसा से इससे भी बढ़कर मुतालबे किए थे, राइट किए थे ना। क्या कहा था, फ़कालू अरिनल्लाह जहरतन, हमें अल्लाह को दिखाओ एलानिया, हम अपनी आंखों से अल्लाह को देखना चाहते हैं। इस तरह कहने के बदले में क्या हुआ, फ़ग़ज़तहुमु सा'इक़तु बिज़ुल्मिहिम, बस उनको पकड़ लिया कड़क ने इनके गुनाह की बर्दाश्त में। यानी जो ही छोटा मुंह बड़ी बात के तहत उन्होंने ये मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया। खैर, इधर से इनकी जान खुलासी हुई तो सुम्मत तखज़ुल इचल मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया इसके बाद कि इनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी थी। बातें याद आ रही हैं पीछे से, एक से एक नाफरमानियों के साथ इनकी तारीख भरी पड़ी है। अल्लाह कहते हैं, फअफऊना ज़ालिका, हमने फिर भी इनसे दरगुजरी किया, हमने फिर भी इनको माफ़ कर दिया कि छोड़ो अब ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग। तो वातैना मूसा सुल्ताना मुबीना, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ह गलबा दिया। क्या दिया, या लिख लीजिए सुल्ताना मुबीना से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के लाओ लश्कर पर गालिब भी किया और उन पर तौरात भी नाजिल की। ये सब कुछ इनको देखकर अल्लाह ताला क्या दिखाना चाहते थे कि जो लोग नेमतों की कदर नहीं करते अल्लाह ताला उनको महरूम कर देते हैं। इसी तरह आयत 154 में इनकी तारीख का एक और वाक्या, वरफान फौकहुमत्तूर, और हमने इनके सरों पर मुअल्लक कर दिया कोहे तूर को, खड़ा कर दिया, क्यों, बिमीसाकिहिम, इनसे पक्का वादा लेने के लिए, पुख्ता अहद लेने के लिए हमने कोहे तूर को इनके सर पर खड़ा कर दिया। वकुलना लहुम उदखुलुल बाब सुज्जदा, और इनसे कहा कि दरवाजे में दाखिल हो जाएं झुक कर, यानी झुकने की कैफियत में जाएं। वही यरूशलेम का जो जरीको शहर था, अरीहा बोलते हैं, जब फतह हो जाए तो इसमें दाखिल होने लगो तो अपने सरों को झुका कर आजी के साथ दाखिल हो जाना। इन्होंने क्या किया, सीरीन के बाल बच्चों की तरह लेट लेट के चलना शुरू किया कि झुकना हमें अच्छा नहीं लगता। एक और इनकी ज्यादती, वकुलना लहुम ला तादु बिस सब, और हमने इनसे ये भी कहा कि सब यानी हफ्ते के दिन के कानून में हद से तजावुज ना करना, वही मछलियों का वाक्या। वाखस न मिन हुमी साकन गलीजा, और हमने इनसे इन तमाम बातों के बारे में बड़े गाढ़े कौलो इकरार लिए, यानी ये सब कुछ इनसे हमने लिया मुख्तलिफ मवाके पे, हमने इनको मुख्तलिफ हुक्म दिए और इन्होंने ना माने। आप सोचिए जरा कितनी ढीठ कौम होगी, एक नहीं मानी, दूसरी नहीं मानी, तीसरी नहीं मानी, इनको कोई बात क्या समझ नहीं आती थी? क्या इनके पास इल्म नहीं था? अल्लाह कहते मिन बादी मा जातहुमुल बय्यिनात। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंसान को सिर्फ इल्म नहीं बचाता। बनी इसराइल के ये वाकयात पढ़ते हुए आप ये मत सोचिए कि इनको इल्म नहीं था, तौरात में क्या हुक्म किधर है, कितनी आयतें, उनका तर्जमा क्या, उनकी अदायगी तजवीद से कैसे होती है, ऐसा नहीं था, सब कुछ था। लेकिन क्या वजह हुई कि वो बात ना मान सके? आयत 155, फबिमा नक़दिहिम मीसाकहुम, ये सजा थी इनके वादों को तोड़ने की। यानी जब कोई कौम वादों को पूरा ना करे, नकदे अहद करे, यदि नकद कहते हैं तोड़ने को, मीसाक को तोड़ दिया, ये जो इनके जरायम की एक लंबी लिस्ट है, इसको करने की वजह से हमने क्या किया? लअन्नाहुम, हमने इन पर लानत की, इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। बार बार जब कोई कौम बात ना माने तो उसके साथ यही होता है। वकुफ्रिहिम भी आयात इल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार, ये इनका दूसरा जुर्म था। और तीसरा, वक़त्लिहिमुल अंबिया बिगैरि हक, और नबियों को नाहक कत्ल करने के सबब कितने हो गए? नकदे अहद नंबर एक, कुफ्रिहिम भी आयात इल्लाह, तीसरा कत्लिहिमुल अंबिया, और चौथा वक़ौलिहिम कुलूबुना गुल्फ, और इनके इस तरह कहने के जुर्म में कि हमारे दिल तो गिलाफों में बंद है। ये चार बड़े बड़े जुर्म इधर है, आगे भी आएंगे। अल्लाह कहते हैं ये दिल तुम्हारे गिलाफों में नहीं है, बल तबअल्लाहु अलैहा, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दी है। क्यों? बिकुफ्रिहिम, इनकी नाशुक्री की वजह से, नाफरमानी की वजह से, बात ना मानने की वजह से। और अब होगा क्या? फला युमिनून इल्ला कलीला, नहीं ईमान लाएंगे इनमें से मगर थोड़े, या जो ईमान लाएंगे वो बड़ा थोड़ा लेकर आएंगे। और इस पांच के ऊपर छठा जुर्म क्या है? आयत 156, वबिकुफ्रिहिम वकौलिहिम अला मरियम बुहतान नजीमा, और बस अब इनके कुफर के और इन बातों के जो इन्होंने मरियम के खिलाफ की, एक बहुत बड़े बुहतान की सूरत में। क्या बुहतान बांधा था इन्होंने हजरत मरियम पर? जिना का। हजरत मरियम को बचपन में बैतुल मक़दस में इबादत के लिए एक चबूतरे में रखा गया, वो वहाँ इबादत करती थी। उस वक्त बैतुल मक़दस की टेक केयर एक शख्स करते थे जिनका नाम यूसुफ नज्जार था, टेक केयरर थे। नऊसुबिल्ला सुम्मा नऊसुबिल्ला, इन्होंने कहा कि बीबी मरियम यहाँ इबादत के बहाने रहती हैं और यूसुफ नज्जार के साथ उनके ताल्लुकात हैं। इतना बड़ा बुख्तान। बाज़ इनकी रिवायतें कहते हैं कि यूसुफ नज्जार के साथ मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत हो चुकी थी, अभी रुख्सती नहीं हुई थी कि इनके दरमियान ताल्लुक कायम हो गया, जैसे आज इनकी नस्ल के अंदर ऐसा ताल्लुक चलता है। और उस ताल्लुक के नतीजे में ये बेटा पैदा हो गया। नसारा का एक सेक्ट है जो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने की बजाय ये यूसुफ नज्जार का बेटा कहते हैं, हज़रत मसीह को वलदुज़्ज़िना करार दिया। इतनी बड़ी बात, ये तो आपने सुना होगा ना, सन ऑफ गॉड। लेकिन एक नज़रिया आज भी इनके मज़हब में सन ऑफ मैन का भी है, और मैन की जगह वो यूसुफ नज्जार को कहते हैं। फिल्म तो नाम सुना ही होगा, पूरी फिल्म बनी हुई है अमेरिका में। ईसाइयों को बताया जाता है कि जिस मसीह को तुम सन ऑफ गॉड कहते हो, हकीकत में वो सन ऑफ मैन है। ये है बुहतान नज़ीमा। आप सोच सकते हैं कि एक कौम इतनी डीट कब हुई, क्या इल्म नहीं था? तो यहाँ छोटी सी बात समझ लें जो मेरे और आपके अपने फायदे की है। सिर्फ इल्म को पा लेना, दिमाग के ऊपर ले आना काफी नहीं होता। जब तक वो इल्म दिल की तख्तियों पे ना लिखा जाए और दिल के रास्ते पूरे जिस्म पर ना आ जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल से बात वाजे करूंगी और आप सब भी अपने आप को चेक करें कि आप किस दर्जे का इल्म ले रहे हैं। देखिए आप ग्रोसरी लेके आते हैं ना, अमूमन लोग घरों में इकट्ठी ग्रोसरी ले आते हैं और किचन के पीछे कोई पेंट्री या कोई स्टोर है उसमें रख देते हैं। क्या आपका ग्रोसरी को खरीद के स्टोर कर लेना आपको फायदा देता है? पेट भरता है? खाना पकता है? नहीं पकता ना। खाना कब पकेगा कि वही खाना सामान जो आपने लाकर पीछे स्टोर में रख दिया, अब वक्त पड़ने पर उसको वहां से लाएं किचन में और किचन में खाना पकाकर उसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करें। बिल्कुल यही दो मरहले इल्म के हासिल करने के होते हैं। पहला स्टॉप ओवर जो कुरान का होता है ना, वो दिमाग पे होता है। आप लफ्जी तर्जमा याद करते हैं, तजवीद के रूल्स देखते हैं, आप आयतों की तफसीर लिखते हैं, पूरा फोकस करना चाहते हैं कि या समझ आ गई ये बात के नहीं। यानी सिर्फ जहन पर जब तक आप कुरान को रखेंगे बात नहीं समझ आएगी। बात समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि दिमाग के स्टोर से निकाल कर उसको दिल के खाने में लाना पड़ता है और वहां से पूरे जिस्म के अंदर उसको फैलाना पड़ता है। जो लोग इल्म के पहाड़ बन जाते हैं इल्म हासिल कर करके, लेकिन उसका नजूल दिल पे और दिल के रास्ते अमल में नहीं ढलता, यही हालात होते हैं जो बनी इसराइल के उलमा के हुए। आप समझते होंगे कि शायद इनमें कोई इल्म वाला नहीं था, इतने बड़े बड़े इल्म वाले थे और इन्होंने शरीयत को बिल्कुल मोम की नाक बना दिया था। और शरीयत में तब्दीली वही करेगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा। हम जैसा बंदा जाके किसी अमेरिकन लॉ में कोई चेंजेस कर सकता है? वही करेगा ना जो अमेरिकन लॉ को बारीकी से जानता है, उसकी रीच है, वो जाके कॉन्सुलेट में बैठता है, बात करता है, जो भी हालात है फिर बात करेगा ना। तो इल्म के अंदर तब्दीलियां इल्म हासिल किए बगैर होती नहीं है। ये जिन फिरकों के हम नाम पीछे पढ़ रहे हैं ना, आगे भी आ रही है बात, अब फिर उसको भी समझ लें, जिन्होंने मुसलमानों में रहते हुए डिफरेंट सेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, वो इल्म वाले लोग थे। आज भी मौजूद हैं ऐसे इल्म वाले हमारे दौर में। लोग कहते हैं उनके हवाले सुनो, उनके इल्मी बातें सुनो। इल्म की हद तक तो पहाड़ है, लेकिन उस इल्म को पिघला कर जिस्म का हिस्सा नहीं बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला अहले किताब की जो जरायम की लिस्ट है, अब उसमें एक और चीज जिसका ताल्लुक आज फिर बराह रास्त मुसलमानों से है, उसका तस्करा करते हुए फरमाते हैं। सातवां उनका जुर्म सुन लीजिए, आयत नंबर 157, वकौलिहिम, और इनका ये कहना, इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, बेशक यकीनन हमने कत्ल कर दिया मसीह को जो ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल थे। पहले तो यहाँ ये नोट कर लीजिए कि ये अल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह, ये हजरत ईसा का मुकम्मल नाम है जो इधर आ गया। कभी इनका नाम मसीह आता है, कभी इब्ने मरियम आता है, कभी ईसा आता है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि पूरे का पूरा है। दूसरी बात इसमें ये नोट कीजिए कि ये यहूद का जुमला है जो अल्लाह ने यहाँ कोट कर दिया कि बेशक यकीनन हमने ईसा इब्ने मरियम जो अल्लाह के रसूल थे उनको कत्ल कर दिया। ये कोई खुशी का दावा जो कर रहे हैं, फख्रिया दावा करते हैं, हाँ वी डिड इट, वी किल हिम, हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया। अल्लाह सुबहान तआला कह रहे हैं, हैरत की बात है कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, वो अल्लाह के रसूल को मानते थे कि नहीं मानते थे, सवाल पैदा होता है, लेकिन वो थे अल्लाह के रसूल। उन्होंने कितनी बात कही, वकौलिही मिन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, बस इतनी बात की। क्योंकि अगर वो उसको रसूलुल्लाह मानते तो कत्ल क्यों करते, वो रसूलुल्लाह नहीं मान रहे थे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उस चीज पर ताज्जुब है कि अच्छा अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि अल्लाह ताला का रसूल कह है, अब हजरत ईसा का असल मुकाम क्या था, इसको फिर आगे करेंगे बात, वरना आप उलझ जाएंगे, क्योंकि वो अगर अल्लाह के रसूल थे तो फिर वो कत्ल कैसे हो गए। चले समझ लें, बात छेड़िए तो देखिए, एक होता है रसूल और एक होता है नबी, बात फर्क है, दोनों का फर्क पता। रसूल के पास नई शरीयत होती है, नबी पिछली शरीयत को चलता है। एक बुनियादी फर्क रसूल और नबी का मैंने आपको पीछे लिखाया था, लेकिन तस्कीर अच्छी होती है कि नबी को लोग कत्ल कर सकते हैं। अंबिया को किया, हजरत जकरिया को किया, हजरत याहिया को कत्ल किया, लेकिन रसूल को कत्ल नहीं कर सकते। यहां अल्लाह तआला का रसूल, अल्लाह का लफ्ज लाना, ये बताता है कि हजरत ईसा कत्ल नहीं हुए। ये आप बारीकियां कुरान की हम समझ सकते हैं, कि वो कहते हैं हमने कत्ल किया, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह तो कभी कत्ल ही नहीं होते, क्योंकि सूरत मुजादिला आयत 21 में आता है कतब अल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली, कि अल्लाह ने कह दिया कि ये बात तो मैंने लिख दी है कि मैं ही गालिब रहूंगा और मेरे रसूल रहेंगे। अब ये तो उनका दावा था ना कि हमने कत्ल किया है, लेकिन असल हकीकत क्या है, वमा कतलूहू, नंबर एक लिख लें। और हालांकि उन्होंने इसको बिल्कुल कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहू, नंबर दो, और ना ही उसको सूली दी, सल्ब नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि इनकी शबीह बना दी गई इनके लिए, यानी ये सोचते हैं कि हमने हजरत ईसा को कत्ल कर दिया, हालांकि ईसा को नहीं बल्कि उनकी शबीह के नाम के एक शख्स को अतः कत्ल किया। पीछे सुनाई थी कहानी, वही बात इधर याद कर लीजिए कि वो शख्स जिसकी शक्ल हजरत ईसा से मिल गई उनको कत्ल करके वो समझे, और इंजील बरनाबास जिसका हवाला दिया था कि वो बहुत ज्यादा क्लोज है रियलिटी के, उसमें लिखा हुआ है कि इस शख्स का नाम यहूदा था, जूडास, और ISCARIOT। अब इसको जैसे भी पढ़ लें, ये आपके हवारियों में से था। अब नियत उसकी क्या थी उसको छोड़ दे, लेकिन कहते हैं कि उसने आपको गिरफ्तार कराया था और इसी की पैदाइश में अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया। ये जो गुड फ्राइडे मनाते हैं, शायद फरवरी में मनते हैं, या कब, ईस्टर जिसको आज के दौर में कहते हैं, ये इसी मौके की याद है। अगर आप क्रिश्चियंस की हिस्ट्री पढ़ें ना, तो उसमें भी ये सारे मुख्तलिफ, जैसे आज हम मुसलमानों में रबी अव्वल और शाबान और शब रात के नाम पे कई मुख्तलिफ त्यौहार हैं ना, इसी तरह इनके भी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया। अब देखिए कितनी तकरार है, वमा कतलूहू, बात काफ़ी थी ना, नहीं कत्ल भी नहीं किया, सूली भी नहीं चढ़ाया। वइन्नल्लज़ी नख्तलफू फीही लफी शक्के मिन्हू, और जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ में पड़ गए, वो तो इसके बारे में शक में पड़े हुए हैं, यानी ऐसे लोग जो हैं वो शक का शिकार हैं। ये कौन लोग हैं इन्नल्लज़ीन अख्तलफू भाई, सिर्फ यहूद नसारा नहीं, वो तो थे ही, उनसे तो हमें कोई बहस नहीं, लेकिन आज अल्लज़ीन अख्तलफू में खुद को मुसलमान कहलाने वाला एक गिरोह भी है, जो कहते हैं कि हजरत ईसा फौत हो गए थे और अब उनकी जगह पे उनके मसील आ चुके और गुलाम अहमद के नाम पे, और उनके आने की सारी रिवायतें, वही बात जो आप देख रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मा लहुम बिही मिन इल्मिन, इनको इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है, इल्लत्तिबा जन्नी, सिवाय अपने गुमान की पैरवी करने के, ये सिर्फ अपने गुमान के पीछे चल रहे हैं। वमा कतलूहु यकीनन, फिर अगली तकरार आ गई, और नहीं उन्होंने इनको कत्ल किया यकीनन, ये अल्लाह का फैसला है, यकीनन अज यकीनन उनको कत्ल नहीं किया, किसकी बात सच्ची होगी, उनका दावा कि अल्लाह की बात, अच्छा भी कत्ल नहीं किया तो किधर गए, सवाल आता है ना, तो आयत 158, बर रफाहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, वही जो पीछे पढ़ चुके हैं, इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियू का इलैह, ऐसा फिक्र न कर, तुझे तेरे बदन और जिस्म के साथ लूंगा और अपनी तरफ बुला लूंगा, वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह जबरदस्त है कमाल हिकमत वाला। पीछे बात पहुंच चुकी है ना अब तक, कि अल्लाह ने कैसे एन वक्त पे ईसा को बचा के जिस्म और रूह के साथ आसमान पे रखा, और अल्लाह अजीज है गालिब है, क्यों ले गया, हिकमत है, वापस लेके आएगा, तो हजरत ईसा इस वक्त भी जिंदा है, दुनिया में आएंगे। 100 के करीब मुतवातर हदीसें मौजूद हैं, मुतवातर कहते हैं कंटिन्यूस, जिसकी चेन टूटी भी ना हो, कि जिसमें हजरत ईसा के दोबारा आने और इस्लाम का पैगाम फैलाने और बाद में तबई मौत मरने का जिक्र है। एक एक बात ऐसे लगता है कि जिसको देखें तो सामने हर चीज महसूस होती है, और इनका वाक्य अगर आपने पढ़ना है तो कहीं भी जाके पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा बहुत कुछ नेट पे, कि किस तरह से इन लोगों ने हजरत ईसा की जान लेने की कोशिश की। देखिए खुद कहते हैं वो अल्लाह का रसूल है और वो सेवियर है, हजरत ईसा को सेवियर कहते हैं, सेव करने वाला, जो खुद को सेव नहीं कर सका आपको कैसे करेगा। इनके बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपना अकलौता बेटा ज़िबा करा दिया, हजरत ईसा हमारे गुनाहों के कफारे में सूली पे चढ़ गए, क्यों, ताकि हम गुनाह करें और मौज मस्ती करें। खुद सोचिए कि अपने नबी को इतना कमजोर समझते हैं कि वो मर गया, और ऐसे जुमले मारूफ हैं इन लोगों की तरफ से कि मुसलमानों का नबी तो तुम्हारे बेटों को कत्ल कराता है जंगों में ले जाकर, और हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमारी खातिर खुद सूली पे चढ़ गया। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, होना क्या। अब अगली आयत बड़ी खूबसूरत है जो फ्यूचर से मुतल्लिक है, आयत 159, वाइम मिन अहलिल किताबी, और नहीं है कोई भी अहले किताब, मुराद क्या कि हर अहले किताब, इल्ला लयूमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, मगर ये कि वो ईमान लाएगा उस पर उसकी मौत से पहले, और वयौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और वही क़यामत के दिन इनके खिलाफ गवाह बनकर खड़े किए जाएंगे। अब यहाँ बात जरा थोड़ी सी सोचने की है और देखने की है, और वो क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए आसमान पे। अब जो पीछे के नसारे हैं उन्होंने अकीदे में बहुत खराबियां भी कर ली। अल्लाह ताला कहते हैं हर अहले किताब उसकी मौत से पहले हजरत ईसा पर ईमान जरूर लाएगा। अब सवाल पैदा है मौत ही में ही किसकी मौत है। इसमें दो राय हैं उलमाए कराम की। एक क्या है, मरने वाला हर ईसाई नसारा क्रिश्चियन अपनी मौत से पहले ईमान ले आता है हजरत ईसा के ऊपर कि वो जिंदा है और दिस एंड दैट, फौत नहीं हुए बल्कि आसमान पर हैं, और उनका अकीदा हजरत ईसा के मामले में ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इस पे जो एम्फेसाइज किया मुफस्सरीन ने, वो कहते हैं कि मौत ही से मुराद ईसा की मौत है, और इसके बारे में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे अपनी तबई मौत के मरने से पहले जितने उस दौर के क्रिश्चियंस हैं ना, वो सब हजरत ईसा के हाथों मुसलमान हो जाएंगे, ज्यूस के साथ मुकाबला करके खत्म हो जाएंगे ज्यूस, ज्यूस में कोई नहीं बचेगा, और ईसाई सारे उनके साथ मिलके मुसलमान हो जाएंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक इमाम और एक खलीफा के तौर पे दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे, और उस वक़्त पे दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब होगा जिसको इस्लाम कहते हैं। और ये जो यौमल क़ियामत तक गवाही की बात हुई है, तो ये वही है जो हम पीछे आयत 41 में पढ़ चुके हैं इसी सूरत की, कि फ़कई फ़ैज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिम भी शहीदम व जी ना भी काला हा उलाई शहीदा, कि हर नबी को अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी है, और हजरत ईसा भी अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह मैं क्या था और इन्होंने मुझे क्या बना दिया और मेरे बारे में इस तरह की बातें कर दी। एक तो रिवायतें पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपका यकीन बढ़ जाए इस बारे में। इमाम बुखारी ये रिवायत लाते हैं अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कसम इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अन करीब तुम्हारे दरमियान जरूर नजूल फरमाएंगे ईसा इब्ने मरियम हाकिम और आदिल बनकर, यानी नबी बनकर नहीं आएंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिये को गिरा देंगे, और माल की इतनी कसरत हो जाएगी गोया के बहने लगेगा यहाँ तक कि इसे कोई कबूल करने वाला न होगा, और एक सजदा इंसान को दुनिया व माफीहा से प्यारा होगा। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, यही जो हमारे सामने है कि वही मिन अखलिल किताब इल्लियु मिन नबी कबल मौत ही, कहते हैं इसी पे इसके अंदर तस्करा। एक और रिवायत में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, अबू हुरैरा से रिवायत है मुस्नद अहमद में, अल्लाह के नबी ने फरमाया तमाम अम्बिया अल्लाती भाई हैं। अल्लाती किसको कहते हैं, बाप एक माए फर्क। मैं ईसा इब्ने मरियम के सबसे करीब हूँ, यानी टाइम पीरियड के अतबार से हम दोनों बहुत करीब हैं, क्योंकि इनका दीन एक है और शरीयत अलग है, और मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं, वो अनकरीब उतरने वाले हैं, जब तुम इनको देख लो तो पहचान लेना। अब जरा सुनिए हजरत ईसा का हुलिया, सुर्ख सफेद रंगत और सर से कतरे गिर रहे होंगे, हालांकि बालों में तरी ना होगी, बाल सूखे हैं लेकिन बालों की नोकों से पानी गिर रहा होगा जब ये आएंगे, स्लीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया ख़त्म होगा और तमाम बातिल अदियान ख़त्म हो जाएंगे सिवाय इस्लाम के, इन्हीं के दौर में अल मसीहुल कज़्ज़ाब यानी दज्जाल, जैसे हजरत ईसा का इन लकब अल मसीह है ना, तो यहूद मसीह कहते हैं दज्जाल को और उसका नाम मसीहुल कज़्ज़ाब है, इसको ख़त्म करवाएगा, फिर ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा, यहाँ तक कि ऊँट और शेर, चीते और गायियाँ, भेड़ियाँ और बकरियाँ सब एक ही चरागाह से खाएंगे और चीर फाड़ ना होगी, यानी दुनिया में जब गुनाह नहीं होते ना तो जानवर भी एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते, और छोटे बच्चे सांपों से खेलेंगे और जरर न पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला जितना अरसा इनको रखना चाहेगा, जब तक वो रहेंगे, फिर वफात पाएंगे, फिर मुसलमान इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे और दफन करेंगे। कोई एक झोल है इस लफ्ज़ में? मुस्लिम की रिवायत में आता है कि दमिश्क में मिनारे शर्की के ऊपर आएंगे, दमिश्क में उतरेंगे जब भी उतरेंगे। और रिवायत में कि ईसा की तदफीन नबी सल्लम के हुजरे में होगी। आज भी अल्लाह के नबी के रोज़े में हज़रत ईसा की जगह मौजूद है जहाँ पे इनको दफन किया जाएगा। अभी खातिम की रिवायत है, क़यामत के करीब जब अल्लाह ईसा को भेजेगा तो कोई नेक या बद ऐसा ना होगा जो ईमान ना ले आए। तो मुराद क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने में कोई शक नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, ला यमूत अल यहूदी, कोई यहूदी नहीं मरता जब तक कि वो ये गवाही ना दे दे कि बेशक ईसा अब्दुल्ला और उसके रसूल, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और अगरचे वो हथियार ही से कत्ल किया जाए। मतलब यह है कि ना माने तो ना माने, लेकिन मौत के वक्त सारे पर्दे छट जाते हैं और उस वक्त वो मान लेंगे। तो इसमें कोई शक तो नहीं है ना?